Recording in progress.
Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کہاں تھے بھائی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جی ہم سوری صحیح آپ عبداللہ یا ابراہیم اپنے بیٹے کا نہیں اپنے بھائی کا نام لیتے کرتے ہیں یا عمرہ یا عمرہ آپ کچھ کہہ رہے تھے یہی نہیں اور آپ کچھ مختلف کہہ رہے تھے زور سے بولیں ہاں ٹھیک ہے بدر کے مقام پر جہاں جنگ کے لیے صفیں بن رہی تھیں چلے انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں پر تھے جہاں پر صفیں بن رہی تھیں یعنی وہاں پہنچ چکے تھے ٹھیک ہے تو ہاں پہنچ تو ہم یہیں تک چکے تھے اور انہوں نے کیا لکھا کہ بدر کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ ایک چبوترے میں رہیں اور صحابہ لڑیں گے اور مقام بتا دیا تھا کہ کس کو کہاں مارنا ہے نہیں کس کو کہاں مرنا ہے ہاں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی تھیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ کے لیے ہم ایک چھپڑ بنا دیتے ہیں چبوترا نہیں چھپڑ یعنی ایک چھوٹا سا ٹیمپرری قسم کا روم بنا دیتے ہیں اونچی سی جگہ کے اوپر جہاں سے آپ کو سب لوگ نظر بھی آئیں گے اور آپ جو ہے نا وہ خود آ کر کے لڑائی نہ لڑیں بلکہ ہم لوگ لڑائی لڑیں گے آپ وہاں سے ہمیں دیکھتے رہیے گا انسٹرکشنز دیتے رہیے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجویز کو پسند کیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ ڈسکشن کری تھی کہ یہ جو کافر لوگ تھے نا تو ان کو جب ابو سفیان نے یہ میسج بھیجوا دیا تھا نا کہ بھائی تم لوگ یہاں پر آئے تھے آپس میں لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے تو یہ تم تو خالی ہماری حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے جو ہمارا قافلہ جا رہا تھا تمہارے سارے سامان کے ساتھ مال و دولت کے ساتھ تم اس کی حفاظت کے لیے آئے تھے تو وہ تو محفوظ ہو گیا ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے اب لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی کے اوپر جو ہے وہ مزید بات یہ ہوئی تھی کہ ایک تھے حکیم بن حزام نا تو ان کو بھی یہ بات بالکل صحیح لگی وہ عتبہ کے پاس پہنچ گئے عتبہ کو کہا کہ بھائی کیا ضرورت ہے ہمیں لڑنے وڑنے کی ٹھیک ہے تو عتبہ بھی ان کی بات مان گیا حکیم بن حزام کی اور عتبہ نے جا کر کے لوگوں کے سامنے تقریر کری کہ بھائی اب ہمیں جو ہے نا واپس چلے جانا چاہیے یہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں رشتہ داروں سے بھی کوئی لڑتا ہے اور اگر یہ لوگ جیت گئے تو ہمارے فائدہ ہے ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ جیت جائیں گے عرب کے اوپر حاکم بن جائیں گے تو ہماری فیملی جو ہے وہ عرب کی حاکم بن جائے گی ٹھیک ہے تو لڑنے وڑنے کی کیا ضرورت ہے چلو واپس چلو ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے نا جب ابو جہل کو پتا چلی نا تو ابو جہل بڑا غصہ ہوا اس نے کہا یہ عتبہ جو ہے نا یہ اس لیے اتنا جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ جو ہے نا یہ اصل میں مسلمانوں کے ساتھ ہے اور اس کو ڈر ہے کہ کہیں لڑائی میں ابو حذیفہ مارا نہ جائے ہمارے ہاتھوں ٹھیک ہے تو اس نے پھر حرکت یہ کری کہ ایک بندے کو بلایا اور اس کا نام تھا عامر بن الحضرمی اور اس نے کہا کہ تمہارا جو بھائی عمر بن الحضرمی جو ہے نا جس کو مسلمانوں نے قتل کر دیا ہے ہمیں تو اس کا بدلہ لینا ہے ہم اس بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ عتبہ کہہ رہا ہے کہ چلو چلو واپس چلو تو اس نے عامر نے جو ہے نا عامر بن الحضرمی نے چلانا شروع کر دیا واہ عمرہ واہ عمرہ اور لوگوں کو اس نے بھڑکایا کہ نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے تو اب یہ لوگ جو ہے نا وہ تیار ہو گئے جنگ کے لیے ٹھیک ہے اب دونوں کی صفیں بھی بن گئی وہ لوگ جو ہے وہ سامنے سارے اپنے تیر کمان نیزے اور جو کچھ تھا وہ سب لے کر کے کھڑے ہو گئے لائنز کے اندر اور مسلمان بھی لائنز کے اندر کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے اب جو ہے نا جنگ شروع ہوئی اصل جنگ اس زمانے میں जंग से पहले एक रिवायत थी कि सारे लोग एक साथ लड़ना नहीं शुरू करते थे, बल्कि पहले जो है ना वो जरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेन होते थे ना, सबसे ताकतवर किस्म के लोग होते थे, बहादुर लोग होते थे, वो आगे आते थे दोनों साइड से और फिर वो आपस में लड़ते थे। ठीक है, सारे लोग एक साथ लड़ना शुरू हो भी जाते थे कभी, लेकिन टिपिकली ऐसे होता था शुरू में कि वो फिर अपने मसल्स दिखाते थे स्ट्रॉन्ग लोग आकर के ना। तो पहले ना उनकी तरफ से, कुरैश की यानी कुफार की तरफ से तीन लोग बाहर आए। वो तीन लोग कौन थे? एक था यही उतबा, ठीक है, और दूसरा कौन था? उसके दो बेटे नहीं थे, हाँ, उसका भाई था शैबा और उसका बेटा था वलीद। ठीक है, ये तीन सामने आए, शैबा, उतबा और वलीद। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे पहले हमें आपको रिमाइंड करवाना था, ठीक है, तो उसको हम स्किप नहीं करना चाह रहे, बहुत अहम पॉइंट है। वो क्या है कि ये जो हम जिस किताब को आजकल रिफर कर रहे हैं ना, हजरत इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैहि, इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा कि ये जो अबू जहल अला बिन हजरमी, अबू जहल जो करता था ना अला बिन हजरमी के खून का जिक्र, तो ये लोगों को जोश दिलाने के लिए करता था ताकि लोग लड़े बगैर यहाँ से वापस ना जाएं। असल मकसद जिसके लिए कुरैश मक्का से निकले थे वो कारवाने तिजारत की हिफाजत थी, उस कारवान की, ठीक है ना। जब वो बच निकला तो अब लोग जो थे ना, यानी जो काफिर थे, वो जंग करने के लिए तैयार नहीं थे ना, ठीक है, और हर थोड़ी देर के बाद कदम कदम पर वापस जाने का मसला खड़ा हो जाता था, ठीक है ना। यानी एवरी वन वॉज लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू गो बैक, ठीक है। अच्छा, तो ये लोग फिर वापस जा क्यों नहीं पाए, हालांकि ये सारे के सारे इस वक्त चाहते थे कि हम वापस चले जाएं, ये क्यों नहीं वापस जा पाए? और इसके बदले क्या हुआ कि इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, और इस लड़ाई के अंदर जो है वो फिर ये लोग जो के वापस जाना चाहते थे वो भी मारे गए और जहन्नुम में फेंक दिए गए, ठीक है ना। अब आपसे जो सवाल है, पहले पूरा उस सवाल को करने दें फिर आप जवाब दीजिएगा कि जब ये लोग वापस जाना चाहते थे तो ये तो इनका तो कसूर ना हुआ कि जंगे बदर के अंदर लड़ाई हुई, राइट। इनकी नियत तो थी वापस जाने की, इनकी नियत थी नबी अलैहिस्सलाम से ना लड़ने की, लेकिन जब लड़ाई हो गई और ये लोग मारे गए तो अब इनको जहन्नुम के अंदर डाल दिया गया, और सबसे बुरी जहन्नुम के अंदर इनको डाला गया, ठीक है। वहां पर भी क्या हुआ कि एक कुआं खोदा गया था और उस कुएं के अंदर इनकी लाशों को डाला गया। उतबा ये वापस जाना चाहता था, लेकिन इसकी लाश को भी उसी कुएं के अंदर डाला गया जिसके अंदर अबू जहल को डाला गया, ठीक है ना। ये उमैया, ये तो आने ही नहीं चाहता था, राइट, ये तो आने ही नहीं चाहता था, लेकिन जब ये मारा गया तो इसको भी उसी कुएं के अंदर फेंका गया जिस कुएं के अंदर अबू जहल को फेंका गया, ठीक है। तो इनका तो कसूर नहीं नजर आता हमें, या आता है? क्यों इनको इतनी बड़ी सजा मिली कि अबू जहल के साथ ही इनका हशर हुआ? इसका जवाब दे। जी, बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि अब इट वॉज टू लेट। आप क्या कहना चाह रहे हैं? रिलेशनशिप था अबू जहल, हाँ, दोस्ती थी, इन्होंने भी जवाब दिया सोहबत की वजह से, ठीक है, सोहबत की वजह से। ये लोग बात तो समझ गए थे कि मुसलमानों से लड़ने का फायदा नहीं है, बल्कि हम मारे जाएंगे, फतह जो है वो मुसलमानों को होगी, हम कत्ल कर दिए जाएंगे, राइट। उसको भी पता था, उतबा को भी पता था, शैबा को भी पता था, और इसको भी, बार बार इसका है, अभी इसका नाम लिया था, उमैया, उमैया को भी पता था, ठीक है। लेकिन ये क्यों मारे गए, क्यों जहन्नुम के मुस्तहिक बन गए? क्योंकि इन्होंने इस पता होने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया, बल्कि अबू जहल के ही साथ रहे। इन्होंने अबू जहल से दोस्ती अपनी खत्म नहीं करी, ठीक है ना। अबू जहल से अपनी दोस्ती खत्म नहीं करी, बिकॉज द ओनली रीजन दे वॉन्टेड टू गो बैक वॉज टू सेव देमसेल्फ, नॉट बिकॉज दे वर ऑन द मुस्लिम साइड. हाँ, दे डिड नॉट गो टू द साइड ऑफ द मुस्लिम्स, है ना, मुस्लिम्स की साइड नहीं, साइड तो उनकी अबू जहल ही की रही ना. वो ये कोई थोड़ी कि अबू जहल तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया, तुमने हमें झूठ बोला, अब हम जा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने के लिए या उनके साथ जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं किया ना इन्होंने. ठीक है, तो इसके ऊपर ना हम फिर आपको एक बार फिर इसी क्लास के अंदर, एक बार फिर कुरान मजीद की वो वाली आयत याद दिलाएंगे. हम पहले भी याद दिला चुके हैं आपको कई दफा, एटलीस्ट एक दफा तो मुझे याद है कि मैं आपको बात बता चुका हूँ. कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस वाक़े के लिए नहीं बल्कि इस बात को कैसे बयान करते हैं. कोई हाफिज साहब हमें वाली आयत सुनाए. इस बात को कि जब जो है ना दोस्त मरवा देता है, बुरा दोस्त जो है ना वो मरवा देता है. सूरह फुरकान की आयत है, बिल्कुल सही फरमाया आपने. कौन सी आयत है? हम तो हाफिज नहीं है लेकिन लिख कर लाए आपके लिए, अगर आप हाफिज हैं माशाल्लाह तो आप सुना भी दें. अच्छा, मुझे लगता है याद तो है आपको लेकिन बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि मारे जाएंगे फिर उसके बाद, वो भी फंस जाते हैं उसके बाद क्योंकि आप लोग भी यही गलतियां कर रहे होते हैं, दोस्तियां बना रहे होते हैं, स्कूल में जाके दोस्तियां बना रहे होते हैं, मोहल्ले में दोस्तियां बना रहे होते हैं, कजन्स के साथ दोस्तियां बना रहे होते हैं. ठीक है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वयौमा यअद्दुज़ ज़ालिमु अला यदैह, कि एक जालिम शख्स जो है ना वो कयामत के दिन क्या करेगा, वो अपने हाथ को काटेगा, ऐसे मुंह खोलेगा, अपने हाथ को खाना शुरू करेगा आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. उंगलियां खाली नहीं खाएगा, हाथ को खाएगा. उंगलियां तो ये लोग दुनिया में खाते थे, ये लोग ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर के ना नबी अलैहि सलाम से जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, ये अपनी उंगलियों कैसे बाइट करते थे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. कयामत के दिन उंगलियों को नहीं बाइट करेंगे, ये हाथ को बाइट करेंगे और खाना शुरू कर देंगे. राइट, हदीस में गालबन आता है कि पूरा यहाँ तक हाथ को खा लेंगे, फिर उसके बाद हाथ जो है ना वो फिर से दोबारा होगा आएगा और ये फिर से खाना शुरू कर देंगे अपने हाथ को. ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं व यौमा यअद्दु ज़ालिमु अला यदैही यकूलू, ये कहता हुआ साथ साथ वो ये भी कहता रहेगा, हाथ को खाता भी रहेगा और कहता भी रहेगा या लैतनि इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, ए काश के मैंने नबी के साथ चलना शुरू कर दिया होता, काश के मैं नबी की साइड पर हो गया होता. इस वक्त दो साइड थी ना, एक अबू जहल की साइड थी, एक नबी अलैहिस्सलाम की साइड थी. काश के मैं इस साइड को छोड़ करके उस साइड पे चला गया होता, नबी के रास्ते के ऊपर चला गया होता, यानी नेकों का रास्ता इख्तियार कर लिया होता. ठीक है, उस दिन हाथ को काटता रहेगा और ये बोलता रहेगा यकूलू, यानी ही विल कंटिन्यू टू से यकूलू, बोलता रहेगा कि काश कि मैंने नबी के रास्ते को अपना लिया होता, या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला, ए काश कि मैंने उस शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता, ए काश कि मैंने उस बंदे को ना फुलाना, फुलान कहते हैं एनी एनी अनस्पेसिफाइड पर्सन जिसका ये जिक्र कर रहे हैं. हर किसी ने किसी ना किसी को दोस्त बनाया हुआ होता है. ठीक है ना, जो जहन्नुम में जाने वाले होते हैं ना उन्होंने गंदे दोस्त बनाए हुए होते हैं. वो तो कहेगा काश के मैंने उसको दोस्त ना बनाया होता. फिर उसके बाद जो है जो आइडियल्स होते हैं ना अपने, वो सबसे ज्यादा बड़े दोस्त होते हैं. जो सबसे ज्यादा करीबी दोस्त होता है ना वो बंदे का आइडियल बन जाता है. तो आइडियल बनाना तो दोस्ती की सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है. ठीक है, सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है कि आपने उसको अपना आइडियल बना लिया. ठीक है, वरना आम दोस्तों को आप अपना आइडियल नहीं बनाते. ठीक है, आइडियल तो सबसे अच्छे वाले दोस्त को बनाते हैं. जैसे अबू बकर सिद्दीक रतान के सबसे अच्छे दोस्त जो थे ना वो नबी अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने वो उनके आइडियल थे नबी अलैहिस्सलाम. ठीक है, तो ये कहेगा कि काश कि मैंने उस शख्स को ना अपना दोस्त नहीं बनाया होता. फिर उसके बाद वो कहेगा जो जंगे बदर में हुआ कि इन लोगों को पता लग चुका था कि ये गलत है, यहाँ पे हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें नबी अलैहिस्सलाम की बात हम मान चुके हैं कि हाँ वो जीत जाएंगे और हमें कत्ल हो जाना है. लेकिन क्या हुआ, लकद अवलनी अनि ज़िक्रि बाद इस जानी है ना. ठीक है, कि उसने ना अबू जहल ने हमें इस बात से गुमराह कर दिया बाद इसके कि हमें पता चल चुका था कि क्या चीज सही है. Now we had already realized that we are on the wrong side. Lekin, because Abu Jahl was still our friend, Abu Jahl ke saath humne phir bhi dosti banayi hui thi, to usne jo hai na wo hame seedhe raaste ka ilm hone ke bawajood seedhe raaste se hata diya. Theek hai na? وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور شیطان نے انسان کو تو بہت بڑا دشمن ہے, اس کو دھوکہ دینے والی چیز ہے. تو اصل چیز جو ہے نا وہ ہے صحبت, دوستی. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے کم چیز ہے, یہ سب سے چھوٹی چیز ہے. یہ سب سے چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ دوست آپ کس کو بنا رہے ہیں, دوست کس کو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کو شیطان کہتا نہیں, یہ سب سے چھوٹی چیز ہے, تو کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آ کے پوچھتے بھی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے نا, مجھے ایسا کرنا چاہیے, ویسا کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, ویسے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مشورہ کرتے ہیں, لیکن دوست بنانے سے پہلے مشورہ نہیں کرتے. عجیب ہے نا, دوست بنانے سے پہلے مشورہ نہیں کرتے, دوسری چیزوں کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں. جو سب سے اہم چیز تھی جس کے بارے میں پوچھنا تھا, اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں. اچھا, یہ خالی بچے نہیں کرتے, یہ بڑے بھی کرتے ہیں. غلطی کچھ ہے, سارے بڑے نہیں کرتے, آپ نے اپنے ابو کو نہیں دیکھے. کچھ بڑے بھی کرتے ہیں, آنٹیاں بھی کرتی ہیں, انکلز بھی کرتے ہیں, تو بچے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, سب سے اہم چیز ہے. اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو پھر سے یاد دلا رہا ہوں, آپ دوستی کرنے سے پہلے پوچھ لیا گیا. ٹھیک ہے, دوستی کرنے سے پہلے جو اسکول جاتے ہیں, اسکول کے اندر ہرگز ہرگز دوستیاں نہیں کرنی ہیں. جو اسکول جا رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ اسکول میں ہرگز ہرگز دوست, حتیٰ کہ مدرسے کے اندر جو مدرسہ جا رہے ہیں نا, مدرسے میں بھی آپ نے دوستی نہیں کرنی, ایون مدرسے کے اندر دوستی نہیں کرنی بغیر پوچھے. ٹھیک ہے نا, اور جو اسکول نہیں جاتے ہیں, ہوم اسکولنگ ہو رہی ہے جن کی, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ بھی اپنے کزنس کے ساتھ دوستیاں نہیں کرنی جب تک کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو اجازت نہ دے, یا اگر پیرنٹس جو ہیں وہ بشائے اجازت نہ دے. ٹھیک ہے, اس وقت تک اپنے کزن سے بھی دوستی نہیں کرنی ہے. رشتہ داری ایک الگ چیز ہوتی ہے, رشتہ داری تو اللہ نے بنا دی ہے آپ کی کزنس کے ساتھ, رائٹ, دوستی ایک الگ چیز ہوتی ہے. ہر کزن کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی, ہر پڑوسی کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی, رائٹ, تو کزنس کے ساتھ بھی دوستی کرنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کے ایمان کی سلامتی کے لیے بات کہہ رہا ہوں. جہنم میں جانا ہے کہ جنت میں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے نا, ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا کوئی. ٹھیک ہے نا, تو اگر اپنے کزنس کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے جو ہے وہ اسکول والوں کے ساتھ دوستیاں کرنی شروع کر دی نا, وہ ایمان نہیں چھوڑتے آج کل, ایمان ختم ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں دوستیاں بنائی ہوئی, کسی محلے والے کے ساتھ دوستی ہے تو فلان, کسی کی جو ہے فلانے کزن کے ساتھ دوستی ہے, کسی کی فلانے کزن کے ساتھ دوستی ہے. بھائی آج کل دوست جو ہوتا ہے نا وہ ایمان کو یوں کر کے واپس ایسے کھینچ لیتا ہے, ایمان ختم ہو جاتا ہے انسان کا. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں آ کر کے آپ کے دل کے اندر نا, پھر ایمان باقی نہیں بچے گا. اٹس ناٹ سمپل, اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو جو سزا ملی نا, جہنم کی سزا, بدترین کافر ہونے کی سزا ان کو کیوں ملی؟ کیونکہ ذکر بات ان تک پہنچ گئی تھی لیکن انہوں نے پھر بھی ابو جہل کی دوستی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, تو جب ابو جہل کی دوستی نہیں چھوڑی تو ابو جہل نے تو وہی حرکت کری جو کہ گندا دوست کرتا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے ان لوگوں کو تانے دینے شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا, اوے بیوقوف کہیں کا, اوے بزدل کہیں کا, ہے نا, اوے تو چوڑیاں پہنو جا کر کے, تم جا کر اسی طرح کی باتیں کرتے نا, تم تو چوڑیاں پہنو جا کر کے, لڑکی ہو تم تو, ہے نا, اس طرح کی بچکانا حرکتیں کرتے ہیں. تمہارے اندر تو کوئی ہمت ہی نہیں, تم تو بالکل ہی ڈرپوک قسم کے انسان ہو. ٹھیک ہے, تو اس نے اگزیکٹلی یہی کیا, اس نے آ کر کے عتبہ کو جو ہے نا خوب تانے دیے. ٹھیک ہے, بس دل کہیں کا ڈر گیا ہے, مرنے سے اس کو ڈر لگتا ہے, یہ تو مسلمانوں سے جو ہے وہ خوف کھانا شروع ہو گیا ہے نا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے پہلے عتبہ ہی باہر آیا. سب سے پہلے جو نکلا نا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے वही शख्स निकला जो कि नहीं लड़ना चाहता था, बदले की बात, उतबा नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन सबसे पहले निकला, ठीक है ना, और अकेला नहीं निकला, अपने भाई को साथ लेके निकला, क्योंकि भाई भी इन्हीं में से था, भाई भी इसी तरफ था, ठीक है ना, तो खुद भी मरा, भाई को लेके मरा, सही है, अबू जहल खुद भी मरा और अपने दोस्तों को लेकर के मरा। अच्छा, भाई को लेके निकला और अपने साथ अपने बेटे को भी लेकर निकला, जिसका नाम था वलीद, वलीद बिन उतबा, ठीक है। अच्छा, इन लोगों को इतना पता था, उतबा और शैबा की अलग स्टोरी है, वो भी आपको अभी बता देते हैं। उतबा और शैबा जो थे ना, इनके थे गार्डन्स या रहमतुल्लाह ताइफ के अंदर, ठीक है, इनका जिक्र हम पहले सीरत के अंदर पढ़ चुके हैं, किसी को याद है कहाँ हमने पढ़ा था उतबा और शैबा का जिक्र पहले? They only backed away when they saw that they were losing, wanted to save their lives. क्या? उसका क्या जवाब है कि आप लड़ नहीं सकते? आप उससे कहें कि तुम जो है ना, वो खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे, ठीक है ना, और मेरी आज से तुम्हारी दोस्ती खत्म। अल्लाह ताला ने कुट्टी बनाई है ना, किसी काम के लिए बनाई है, इसको इस्तेमाल किया करें, सही है, ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया करें। हम लोग अपने दोस्तों के साथ, अच्छे लोगों के साथ कुट्टी करना शुरू कर देते, भाई ये कुट्टी बनाई गई है गंदे लोगों से कुट्टी करने के लिए, ठीक है, लेट्स स्टार्ट यूजिंग इट, ओके, वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट, कुट्टी करना शुरू करें, ठीक है, सब जान लें, सब समझ लें, मजाक की बात नहीं है। लर्न टू से नो, नहीं, आप लोग अम्मा अब्बा को तो नहीं नहीं बोल देते हैं बड़े मजे से, नहीं करना मुझे, भाई जो गंदे लोग हैं, जो जहन्नुम में आपको खींच करके ले जाने वाले, उनको नहीं नहीं बोलना बोल सकते, उधर जा करके जो है ना, सारी की सारी वो अपनी, नहीं नहीं तो नहीं बोलना अच्छी बात नहीं है, अम्मा अब्बा को नहीं बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, उन लोगों को नहीं बोलना अच्छी बात है भाई, बचाओ अपने आप को जहन्नुम की आग से, ठीक है। तो उतबा और शैबा का जिक्र हमने कहाँ पढ़ा था? हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे जी, हमारे पास एक किताब रखी हुई है, हमारे वाले साहब पता नहीं पढ़ते हैं कि उन्होंने रखी हुई है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अच्छा, तो उतबा और शैबा का जिक्र हमने कहाँ पढ़ा था सीरत के अंदर, किसी को याद है? वो हमने पढ़ा था जब नबी अलैहिस्सलाम दावत और तबलीग के लिए निकले थे, कहाँ आपको याद? ताइफ जब गए, ठीक है ना, जब ताइफ गए थे ना, तो आपको याद है कि ताइफ में जाकर के नबी अलैहिस्सलाम अपने रिलेटिव से मिले थे, वहां पे उतबा और शैबा उस वक्त वहां पर थे, ठीक है ना। अब ताइफ और मक्का मुकरमा ज्यादा दूर नहीं है, खाली चंद किलोमीटर्स है, आप अगर गाड़ी में जाएं तो 45 मिनट्स में आप ताइफ पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो जमाने में लोग बाकायदा ताइफ जाते आते रहते थे, नबी अलैहिस्सलाम एक खच्चर के ऊपर बैठ करके ताइफ चले गए थे, ठीक है, तो इतना आसान कम्यूट है ताइफ और मक्का मुकरमा के दरमियान। तो उस वक्त ये लोग ताइफ में थे और अपने बागात के अंदर थे, यहाँ पर जो है ना नबी अलैहिस्सलाम आखिर में आए थे, जब लोगों से बात करी, लोगों ने बात नहीं मानी, तो जो ताइफ के सरदार थे उन्होंने ना वही गली के जो गंदे लड़के थे उनको नबी अलैहिस्सलाम पीछे लगा दिया था, और उन लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना शुरू कर दिया, पत्थर मारने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम बहुत जख्मी होकर के ना, और अपने आप को बचाते हुए गर्मी में शदीद तकलीफ के साथ, राइट, इन लोगों के बाग में आप सरम को जगह नजर आई, आप सरम वहां पे जाके एक दरख्त के नीचे बैठ गए, ठीक है। अब वहां पर जो है ना एक आदमी मौजूद था, उसका नाम याद है? नहीं, उकबा का बाग, उकबा के बाग में आए थे और अंगूर लेकर दिए उकबा ने, वह अद्दास, ठीक है, अद्दास उसका नाम था। ये अद्दास जो था ना, ये था क्रिश्चियन, उस जमाने के अंदर क्रिश्चियनिटी आखिरी मजहब था ईसा अलैहिस्सलाम वाला, तो ये था क्रिश्चियन, और इसका ताल्लुक जो था एक जगह है इराक में या शाम में, शाम में है नैनवा, ये नैनवा का रहने वाला था, और ये उस बाग का जो था ना वो केयर टेकर था। ये उकबा और शैबा जो इस बाग के मालिक थे, ये उनका गुलाम था, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है ना अपने गुलाम अद्दास को कहा कि ये खुद ये अंगूर जो है ना ये लेके जाओ और उनको पेश करो। नबी अलैहि सलाम को ये देख के पहचान गए थे कि ये किस तरीके से पिट पटा करके जो है ना वो यहाँ पे आए हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत तकलीफ में, तो इनके दिल में इतनी नरमी आ गई थी कि इनको कुछ, चलो हमारे बाग में आए तो इनको कुछ खाने के लिए पेश करो, तो अद्दास को भेजा था। ठीक है, तो नबी अलैहि सलाम ने जब अद्दास को देखा ना, तो आपने फरमाया कि तुम्हारा के क्या बताया था कि तुम्हारे भाई यूनुस, हाँ इस तरह से कुछ फरमाया था ना कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। हाँ, नबी रसूल ने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो इसने जवाब दिया कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। तो आप सजन फरमाया कि अच्छा, यूनुस बिन बत्ता का नैनवा, वहां के रहने वाले हो तुम। तो अद्दास ने कहा आपको कैसे पता यूनुस बिन बत्ता का, क्योंकि ये तो बिलीवर था, मोमिन था, ईसाई था, ठीक है, इसको पता था बनी इसराइल के अंबिया का। तो यूनुस बिन मत्ता जो थे वो बनी इसराइल के एक नबियों में से एक नबी थे जिनको मछली ने फिर वो निगल लिया था ना, वही वाले यूनुस बिन मत्ता। ठीक है, तो इसने पूछा कि आपको यूनुस बिन मत्ता का कैसे पता, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, तो वो मेरे भाई थे, नबुवत की वजह से हम सब भाई भाई हैं। तो इसने जब ये बात सुनी ना, तो ये तो नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गए। इस इलाके में किसी को यूनुस बिन मत्ता का नहीं पता, हो ही नहीं सकता पता ये सारी बातें, आपको पता है, और आप जो बात कह रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि आप अल्लाह के नबी ही हैं। तो अद्दास रज़ी अल्लाह जो है ना, वो उस वक्त नबी अलैहि सलाम के ऊपर ईमान ले आए थे। फिर जब उकबा और शायबा ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं भाई, ये तो इनके पैर पर पड़ गए और ये तो इनके साथ इस तरह से, तो उनको वापस बुलाया और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसी वक्त अद्दास ने उकबा और शायबा को बता दिया था कि ये अल्लाह के नबी हैं और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इनसे ज्यादा सच्चा और अच्छा इंसान कोई नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था तुम चलो यहाँ से, तुम तो इनके है ना मुरीद बन गए हो, तुम तो निकलो इधर से। ठीक है, अच्छा, जब ये उकबा और शायबा जो है ना जंगे बदर के लिए तैयारियां कर रहे थे, है ना, जब वो सारा का सारा हुआ था ना कि उधर से मैसेंजर आया था कि चलो चलो अपने काफले की मदद के लिए, तो तैयारियां शुरू हो गई थी, ये भी तैयारियां कर रहे थे। उस वक्त अद्दास जो है ना रजी अल्लाह ताला अन, वो इन दोनों के पास आए और उनसे अद्दास ने इनसे कहा कि तुम मेरे मालिक हो ना, मेरे मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम मेरे मालिक हो, तो इस वजह से मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो, इस तरह से वो लोग बात किया करते थे, बे अबी व उम्मी अंतुमा वल्लाही, ठीक है, अल्लाह की कसम अन्नहू लरसूलुल्लाह, ये जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है ना, वमा तुसाकानी इल्ला इला मुसारिकुमा, ठीक है, तुम लोग नहीं जा रहे हो सिवाय अपनी कतलगाहों की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तुम लोग यहां से मत जाओ, मत जाओ उनसे लड़ने के लिए, ठीक है ना, ये तुम्हारी कतलगाह है जहां की तुम जा रहे हो। ये अद्दास ने इन दोनों को कहा। ठीक है, तो इन दोनों ने तो बात नहीं सुननी थी, क्योंकि वही मसला था कि इन्होंने जो है वो अबू जहल को दोस्त बनाया हुआ था और अबू जहल जो है वो किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक है, तो उकबा का एक बेटा था आस, ठीक है, आस ने जो है ना सॉरी शैबा का बेटा था आस, आस ने अद्दास को रोते हुए देखा ना, तो कहा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तो अद्दास ने उसको बताया कि ई वल्लाही अन्नहु लरसूलुल्लाहि इलन्नासि काफ्फा, कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि वो अल्लाह के रसूल हैं तमाम इंसानों की तरफ। ठीक है, अच्छा, ये बात उकबा और शैबा ने सुन तो ली और उनके दिल में ये बात उतर गई, ठीक है ना, क्योंकि कन्विंस तो वो हो गए, लेकिन बात वही है दोस्त के सामने जो है ना वो मजबूर थे, दोस्त जो था ना अबू जहल और काफिर लोग जो थे ना उनके सामने ये कुछ नहीं कर सके, तो इस वजह से जो है ना ये दोनों चले तो गए, लेकिन इनसाइड ऑफ देम इनको पता था कि मारे जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना ये दोनों जो है लड़ना चाहते नहीं थे, लेकिन अबू जहल ने ऐसे ताने दिए इनको, ऐसे ताने दिए कि सबसे पहले यही दोनों निकल आए लड़ने के लिए। ठीक है, और साथ साथ जो है वो अपने बेटे वलीद को भी लेकर के आ गए। ठीक है, यही करना चाहते थे ये लोग कि हमें जो वो बुरी बुरी बातें कह रहे हैं ना, तो हम प्रूफ करें कि हम बुजदिल नहीं है, हम कॉवर्ड्स नहीं है, राइट, तो ये प्रूफ करने के चक्कर में जो है ना वो मारे जाते। इसी तरीके से क्या कहते हैं उसको, बच्चों के खेल होता है ना डेयर, डेयर डेविल भी कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं उसको, डेयर करता, बच्चे कहते हैं हाँ भाई तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पास हिम्मत है करके दिखाओ। ठीक है, ट्रुथ एंड डेयर, जी ट्रुथ एंड डेयर, ट्रुथ तो खैर उसमें क्या होता है, डेयर डेयर ही होता है खाली। तो हाँ भाई तुम ये काम कर कर सकते हो, अच्छा फलाने दरख्त के ऊपर चढ़ के दिखाओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो उस दरख्त के ऊपर चढ़ के दिखाओ, ठीक है। अब वो कहता है हाँ हिम्मत तो है मेरे अंदर, अब उसको चढ़ना वरना कोई आता नहीं है, वो दरख्त पे चढ़ना शुरू हो जाता है, उधर से नीचे गिरता है, उसके हाथ पैर सब टूट जाता है, ठीक है ना। एक अभी किसी दोस्त ने बताया कि हाँ भाई वो दीवार पे चढ़ करके ना किसी तरीके से स्कूल के अंदर जा करके दिखाओ। भाई दीवार पे चढ़ के स्कूल में क्यों, वहां पे बाकायदा एक दरवाजा बना हुआ है, दरवाजे से स्कूल में जाओ। लेकिन नहीं, दोस्तों ने ढेर कर दिया, है ना, करके दिखाओ अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर। अब वो दीवार फलांग रहे, दीवार फलांग करके नीचे गिरे, उनकी हड्डी टूट गई, ठीक है। तो इस तरह से ना दोस्त जो है ना, ऐसे दोस्त जो होते हैं ना बेवकूफ किस्म के, वो ऐसे मरवाते हैं, ठीक है, दुनिया में भी मरवाते हैं। कभी हड्डी टूट गई, कभी किसी से मार पड़ गई, कभी जो है वो पकड़वा दिया, और उसके बाद फिर आखिरत में भी मरवाते हैं, ठीक है। तो दोस्ती नहीं बनानी चाहिए ऐसे लोगों से ना, अगर बना ली है ना तो मशवरा करें बड़ों से, ठीक है, जो ज्यादा ज्यादा उम्र के हो गए हैं, तो अब तो इस हादिस से खुद डायरेक्टली आकर के मशवरा कर सकते हैं, और जो छोटे हैं वो अपने अब्बू से मशवरा करें, अपनी अम्मी से मशवरा करें कि क्या मुझे इस शख्स को दोस्त रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और फिर बेहतर ये कि उनके पेरेंट्स जो है वो फिर अपने शेर से मशवरा कर लें कि अपने बच्चों को हमें क्या जवाब देना चाहिए। बहरहाल इस तरह की दोस्ती जो है वो नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो है ना ये तीनों जो है वो बाहर आए, तो मुसलमानों की तरफ से भी तीन लोग निकल करके बाहर आए, ठीक है। ये तीन लोग कौन थे, एक का नाम था औफ, एक का नाम था मुअव्वज, दोनों के अब्बू थे हारिस, ठीक है, यानी औफ बिन हारिस और मुअव्वज बिन हारिस, और एक थे अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला। ये तीनों जो थे ना, ये थे मदीना मुनव्वरा के रहने वाले, यानी अंसार, ठीक है, अंसार सहाबी थे। तो उतबा, शैबा, वलीद, ये तीनों खड़े हुए हैं, इधर से औफ, मुअव्वज और अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये तीनों बाहर निकले, ठीक है। तो आगे से ना उतबा ने पूछा तुम कौन लोग हो, ठीक है, हु आर यू, क्योंकि वो तो इन लोगों को नहीं पहचानता था। तो इन्होंने जवाब दिया रहतुम मिनल अंसार, हम अंसार का एक ग्रोह है, अंसार के लोगों में से, ठीक है। तो उसने जवाब दिया मा लना बिकुम मिन हाजा, वी डोंट नीड यू, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू फाइट विद यू, यानी हमारा तुमसे कोई झगड़ा ही नहीं है, हमारा झगड़ा तो अपने लोगों से है जो कि मक्का मुकरमा से भाग करके तुम्हारे पास आ गए, ठीक है ना, तो हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, ठीक है, तो तुम लोग जो है ना वो वापस जाओ, हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, ठीक है। अच्छा उस वक्त जो है ना किसी ने जोर से आवाज दे करके नबी अलैहिस्सलाम को पुकारा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तो नहीं कहा होगा क्योंकि वो काफिर था, या मोहम्मद अखरिज इलैना अकफाउना मिन कौमिना, ठीक है, हमारी तरफ तो निकालो अपनी कौम में से उन लोगों को जो कि हमारे बराबर के हो, राइट, हमारा मैच हो, ठीक है, हमारा तोड़ हो, ऐसे लोगों को तुम निकालो अपने अपने लोगों में से, ठीक है, इन लोगों को तुमने क्यों भेज दिया, हालांकि ये लोग तो खुद उठ करके आए थे ना, ठीक है। तो उस वक्त ना नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा कि आप लोग वापस आ जाएं, तीनों को, ठीक है। जब वापस आ गए ना तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी तारीफ करी, बहादुरी की, कि इन्होंने भाई अपनी जान हथेली पे रख करके बाहर आ गए, है ना, और बिल्कुल अपने आप को पेश कर दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको शाबाश दी और इनकी बहादुरी की तारीफ करी, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन नॉट राइट नाउ, तुम तीनों जो है ना वो वापस आ जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी आपको और डिटेल इन इन सहाबा के बारे में बतानी है, आप तो पूछ रहे थे जी, उस वक्त आप सिर्फ छप्पड़ से बाहर निकल के खड़े हो गए थे और इतना डिस्टेंस नहीं था कि आवाज भी ना जा सके, ठीक है, विद इन ईयर शॉट कहते हैं ना, कि आवाज का आवाज आ जा रही थी और नजर सब कुछ आ रहा था, कुछ बहुत दूर की बात थी, सामने था सब कुछ, ठीक है। तो ये जो थे ना औफ और मुअव्वज़ हारिस के बेटे थे, ठीक है, इनके बारे में इन्होंने बड़ी मजे की एक और तफसील लिखी है कि इनकी जो वालिदा थी उनका नाम था अफरा, ठीक है, एक अंसारी औरत थी अफरा रज़ियल्लाहु ताला, ठीक है, उन्होंने शादी करी हारिस से और हारिस से जो है ना वो उनके तीन बेटे पैदा हुए, उनके नाम थे औफ, मुअव्वज़ और मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला, ठीक है ना, औफ, मुअव्वज़ और मुआज़। फिर इनके शौहर हारिस का इंतकाल हो गया, फिर इन्होंने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, और दूसरी शादी करके इनके फिर चार बेटे पैदा हुए, ठीक है, उनके नाम भी जो है वो लिखे हुए अय्यास, आकिल, खालिद और आमिर, ये चार बेटे उनके दूसरे शौहर से पैदा हुए। पहले शौहर से तीन, दूसरे शौहर से चार, तो इनके कितने बेटे हो गए? सेवन। ठीक है, जंगे बदर के अंदर इनके सातों के सातों बेटे शामिल। क्या जबरदस्त अम्मा थी, क्या जबरदस्त अम्मी थी, है ना। सातों के सातों बेटे जो है जंगे बदर में मौजूद थे, बदरी सहाबी थे, जो सबसे अफजल सहाबा होते हैं ना, एक तो अशरा मुबशरा होते हैं, फिर उनके बाद फिर बदरी सहाबियों का नंबर आता है। ठीक है, अच्छा, तो इनमें से दो जो थे ना, औफ और मुअव्वज जो है, ये आगे आने वालों में से, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इन तीनों को जो है वो वापस बुला लिया और फिर आपसे उन्होंने फरमाया कि हमजा उठो, हमजा रतन को फरमाया कि आप उठें, और फरमाया अली उठो, ठीक है, और फरमाया उबैदा बिन अल हारिस उठो, ठीक है, और तुम तीनों के तीनों जाओ। ठीक है, अब नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से फरमाया होगा कि सिर्फ इन तीनों को आवाज आई, उकबा, शैबा और वलीद को आवाज नहीं आई। ठीक है, तो ये तीनों उठे और ये लोग आगे बढ़े। सही है, अच्छा, आमतौर पे आपने देखा भी होगा रेगिस्तान के अंदर जो लोग होते हैं ना, वो चूंकि डस्ट चल रही होती है, बहुत स्टॉर्म वगैरह, मिट्टी वगैरह उड़ रही होती है, तो वो लोग ना अपने मुंह के ऊपर निकाब लगा लेते हैं, कपड़ा बांध देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों ने ना अपने चेहरों के ऊपर कपड़े बांधे हुए थे निकाब की तरह से। ठीक है, तो वो लोग इनको पहचान नहीं सके कि ये कौन है। तो उकबा ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो इन्होंने फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं हमजा हूं, मैं अली हूं और मैं उबैदा बिन हारिस हूं। तो अब उन लोगों ने कहा, हाँ तुम लोग हो हमारे जोड़ के। ठीक है ना, क्योंकि यानी रिश्तेदार थे और करीबी रिश्तेदार थे, हमजा हजरत आनंद जो थे वो नबी अलैहिस्सलाम के चचा थे। ठीक है, और ये जो थे नबी अलैहिस्सलाम के कजन थे, और तीसरे जो थे वो भी एक कुरैशी सहाबी थे, उबैदुल्लाह बिन हारिस। तलवारें कम थी लेकिन इतनी कम नहीं, ठीक है, कि बल्कि तकरीबन सबके पास तलवारें थी, वो कुछ किसी वजह से या तो कोई कंफ्यूजन है कि सिर्फ दो तलवारें थी, लेकिन जो तफसील लिखी हुई है ना सीरत की किताबों के अंदर, तो उनसे ही पता चलता है कि इनके पास थी तलवारें और इनके पास कुछ तीर कमान भी थे। ठीक है, लेकिन इनके पास शील्ड्स वगैरह नहीं थी, डेफिनेटली शील्ड्स नहीं थी, एक्स्ट्रा घोड़े नहीं थे, और इनके पास जो है वो ज्यादा बाकायदा नेजे वगैरह नहीं थे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तलवारें और तीर कमान तो इनके पास थे। ठीक है, तो अब जब यहां से तीन आ गए और वहां से तीन आ गए ना, तो अब ये 3:3, तीन की तीन से लड़ाई होनी थी। ठीक है, अब इन्होंने एक साथ लड़ना नहीं शुरू किया, बल्कि क्या हुआ कि जो उकबा था ना उसकी लड़ाई शुरू हुई हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु से। ठीक है, नहीं, उकबा की लड़ाई शुरू हुई उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से। ठीक है, उबैदा, और हमजा की लड़ाई शुरू, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लड़ाई शुरू हुई शैबा रज़ियल्लाहु अन्हु से, नाउज बिल्ला शैबा से। ठीक है, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी उम्र भी कम थी और वलीद वो बेटा था तो उसकी भी उम्र कम होगी, तो इन दोनों जो है वो यंगस्टर्स की जो है वो आपस में लड़ाई शुरू हुई, वो जो एल्डर्स थे उनकी एल्डर्स से लड़ाई शुरू हुई, यंगस्टर्स की जो है वो आपस में लड़ाई शुरू हुई। ठीक है, तो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उनका तो आपको पता ही होगा उन्होंने क्या किया होगा, मोहम्मद साहब बताते हैं, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने तो कोई ठहर ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतना तेजी से तलवार मारी कि जो शैबा था ना वो तो एक ही वार में जमीन पे खत्म। ठीक है, उधर अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो भी ऐसे सोर्ड फाइटर थे और ऐसे जबरदस्त थे कि उन्होंने एक तलवार मारी और ये जो वलीद था ना ये तो पलीदी होके रह गया। ठीक है ना, बिल्कुल उधर ही नीचे। सही है, अच्छा, जो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे ना वो थे भी थोड़े से उम्र के ज्यादा, ठीक है ना, थोड़े से जैसे बुढ़ापे की एज होती है ना वो उसको पहुंच चुके थे, तो उनकी लड़ाई शुरू हुई फिर उकबा के साथ, और ये बाकायदा सोर्ड फाइटिंग, जैसे ऐसे ऐसे ग्रामीण तो इतना ही चलाना आता है, तो ऐसे ऐसे जो है उन्होंने लड़ना शुरू किया और इन्होंने भी उसको तलवार मारी, उसने भी इनको तलवार मार दी, तो दोनों जख्मी हो गए। ठीक है ना, अब उसके बाद जो है ना उकबा ने एक ऐसा जोर का इनके ऊपर वार किया कि इनकी टांगे कट गई। ठीक है, अबू उबैदा बिन हारिस की टांगे जो है वो कट गई ना। ठीक है, तो अब ये गिर पड़े, जब ये गिर पड़े ना, तो उस वक्त तक जो है वो अली रज़ियल्लाहु और हमजा रज़ियल्लाहु जो है वो दोनों से फारिग हो चुके थे, मार चुके थे उन दोनों को। तो अब वो दोनों जो है ना वो यहाँ पर आ गए और उन्होंने जो है ना वो उकबा को खत्म कर दिया। ठीक है जी। ये भाई वलीद है जो सरदार था, ये वलीद बिन उतबा था ना, उकबा, वलीद बिन उतबा। ठीक है, एक और भी वलीद था ना, वलीद बिन मुगीरा। हाँ, ये वलीद बिन उकबा है। ठीक है, अच्छा जी। वो सारी बातें बाद में आ रही है। वैसे वैसे जंग शुरू नहीं होती, जंग शुरू तो ऐसे हुई। ठीक है, तो जब ये अबू उबैदा बिन हारिस जो है ना वो गिर पड़े ना, तो इन दोनों ने फिर आकर के उकबा को भी खत्म कर दिया और ये उसको उनको उठा करके नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर के आ गए। ठीक है, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, ये नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर के आए, उनको जो है वो वहां पर लिटा दिया। उन्होंने अपना सर जो है ना, बल्कि अपना मुंह, चूंकि वो लेटे हुए थे और उनके पैर से बहुत सारा खून निकल रहा होगा, राइट, पूरा पैर कट जाए तो सारे आर्टरीज, वेन, सब कुछ एक्सपोज हो गया ना, खूब सारा खून निकल रहा होगा। तो उन्होंने आकर के अपना सर जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम के पैर के ऊपर रख दिया। ठीक है ना, और आप सरसन से पूछा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या मैं शहीद हूँ, क्या मैं शहीद हूँ। ठीक है, ये पहली लड़ाई थी ना इस तरह की, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अशहदु अन्नका शहीद, मैं गवाही देता हूं उस बात की कि आप शहीद हैं। ठीक है, इसके बाद ना वो मुतमईन हो गए और उन्होंने बड़े अजीब से फिर ना उस वक्त अशार पढ़ने शुरू किए। अभी इनकी मौत नहीं आई थी, अभी इनको तकलीफ हो रही होगी या इनका जो है वो खून निकल रहा था, इन्होंने अशार पढ़ने शुरू कर दिए। इन्होंने कहा कि अगर इस वक्त अबू तालिब जिंदा होते हैं ना, तो अबू तालिब ने एक शेर कहा था नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, क्योंकि उनको नबी अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत थी और बड़े अजीब और गरीब किस्म के उन्होंने अशार कहे थे। उन्होंने एक शेर कहा था कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त दुश्मनों के हवाले करेंगे जब हम उनसे पहले कत्ल हो जाएं, यानी अपनी जिंदगी में हम नबी अलैहिस्सलाम को दुश्मनों के हवाले नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर अबू तालिब जिंदा होते ना, तो मैं उनसे ये कहता कि अबू तालिब आपने शेर तो कह दिया लेकिन उस शेर के ऊपर अमल जो है ना वो हमने करके दिखाया। ठीक है, कि हमने नबी अलैहिस्सलाम को दुश्मनों के हवाले नहीं किया बल्कि हम खुद शहीद हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने और भी मजे मजे के शेर कहे और उसके बाद जो है ना वो वहीं पे लेटे रहे। उस वक्त उनका इंतकाल नहीं हुआ बल्कि उनका इंतकाल जो है वो बाद में जाकर के हुआ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है ना, जब ये सारी बातें हो गई, तब जो है वो दोनों फोर्सेस आगे आ गई और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है ना, अब क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो अपने अरीश के अंदर चले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अरीश के अंदर चले गए, यानी सोल्ड फाइटिंग के अंदर, राइट, एरोस फेंकने के अंदर ना नबी अलैहिस्सलाम शामिल हुए ना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शामिल हुए। ये दोनों के दोनों अरीश में आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज की नीयत बांध दी और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। ठीक है, नमाज पढ़ते थे, सलाम फिर नफिल नमाजें थी ये। ठीक है ना, टाइम जो था ये वो था गोहा का वक्त था, क्योंकि ये उस जमाने में जो फाइटिंग होती थी ना इस तरह की, वो इशराक का वक्त खत्म होने के बाद फाइटिंग शुरू होती थी। वल आदियात ज़बहन फलमुग़ीरात क़दहन फलमुग़ीरात, उस तफसीर के उस सूरत की तफसीर में भी यही लिखा हुआ है कि इसी टाइम पे इनों की फाइटिंग हुआ करती थी। तो अब ये नफिल नमाजों का वक्त होता है, नबी अलैहिस्सलाम ने नफिल की नीयत बांध दी और फिर सलाम फेर करके नबी अलैहिस्सलाम ने खूब अल्लाह ताला से दुआएं करनी शुरू कर दी। रोते जाते थे, दुआएं करते जाते थे, रोते जाते थे, दुआएं करते जाते थे और मैदानी जंग के अंदर जो है वो मुसलमान और काफिरों की फाइटिंग शुरू हो चुकी थी। ठीक है, किसी को कोई सवाल है अब तक की डिस्कशन के बारे में? फैमिली ट्री वगैरह मुझे याद नहीं रहता। उकबा खालिद बिन अतानन का, खालिद बिन वलीद, वो वलीद तो बड़ा उम्र का बंदा था ना, खालिद ताना उसके बेटे थे, और उकबा जो है वो खालिद ताना का क्या था, दादा? नहीं, ये वलीद तो नौजवान वलीद था ना, ठीक है। नहीं, खालिद अताना किस वलीद के बेटे? खालिद अताना तो फुल यानी एक एक लोग, एक एक नाम जो है ना, वो कई कई लोगों के होते हैं। अच्छा, और आपको क्या बताएं? नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगते गए मांगते गए, अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर ना एक अजीब दुआ मांगी, उसको बस आपके सामने कह के फिर खत्म करता जी। की आवाज की वजह से मुझे और भी सुनाई दे रहा, क्यों ने हिस्सा लिया था? नबी अलैहिस्सलाम जिसको जो हुक्म दें वो वही करता था, जिसको लड़ने के लिए कहा वो लड़ता था, जैसे अली रतान को लड़ने के लिए कहा, ठीक है। अबू बकर सिद्दीक रतान तो नबी अलैहिस्सलाम के रिलेटिव भी नहीं थे, ठीक है ना, यानी रिश्तेदारी किससे थी? हमजा रजी रतान, सबसे करीबी रिश्तेदारी, और दोस्ती भी कितनी शदीद है ना, नबी अलैहिस्सलाम के भाई भी एक तरह से बनते थे, रजाई भाई भी बनते थे, दोस्त भी बनते। सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम को ना, जो फैमिली वाली रिलेशनशिप होती है, वो हमजा रताना से थी। नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने सबसे करीबी दोस्त और रिश्तेदार को सामने पेश कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को जो सबसे ज्यादा शफकत वाली मोहब्बत थी, अपने छोटे भाई अली रजी अल्लाह तआला से, है ना, जो कि अबू तालिब के बेटे भी थे। अबू तालिब कि क्या क्या एहसानात थे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है, तो अली रज़ी अल्लाह को पेश कर दिया। अब यहाँ पर जो नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को पीछे रखा ना, इसकी रीजंस होंगी, इसकी हिकमतें होंगी, ठीक है। तो ये दोनों फिर उस लड़ाई के अंदर शामिल नहीं हुए। अच्छा, अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं लड़ रहा था काफिरों से, और लड़ते लड़ते जो है ना, मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को फारिग करता था और फिर ऊपर जाता था जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम का अरीश था, वहां पे जाकर के अंदर झांकता था नबी अलैहिस्सलाम खैरियत से, तो देखता था कि नबी अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो मैं फिर वापस आके दोबारा लड़ना शुरू हो जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं फारिग होता था, मैं फिर जाता था, देखता था नबी अलैहिस्सलाम को क्या कर रहे हैं, खैरियत से हैं, नबी अलैहिस्सलाम फिर वही दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, फिर मैं वापस आकर के लड़ना शुरू हो जाता था। तीसरी दफा मैं गया और फिर जाकर के मैं नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, फिर मैं वापस आकर के लड़ना शुरू हो गया। फिर जब मैं चौथी दफा किया ना और वापस आया, उसके बाद फिर पता हो गया, यानी मसला खत्म हो गया, जंग में खत्म हो गया और हमें जीत हासिल हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अनशुरुका अहदक व वादक, कि ए अल्लाह मैं आपसे ना दरख्वास्त करता हूँ कि आपने जो मुझसे वादा किया है ना कि आप मुझे फतह अता फरमाएंगे, उसकी मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, दुआ आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपना वादा सच्चा कर दिखाएं। और फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा इन शिता लम ताकुल, कि अल्लाह अगर आप चाहते हैं ना तो फिर आपकी अब इबादत नहीं की जाएगी, ठीक है। एक और जगह पे इसी दुआ के अल्फाज हैं, उसके बाद फिर आपको समझाता है कि इसका मतलब क्या है। अल्लाहुम्मा अंजिज ली मा वअदतनी, कि ए अल्लाह आपने जो मुझसे वादा किया है ना, आप उस वादे को पूरा फरमा दीजिए, फतह का वादा पूरा फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा इन तहलुक हाज़िहिल असाबा मिन अहलिल इस्लामी ला तअबुदुहुम अर्द, कि ए अल्लाह अगर ये जो जमात है ना हमारी, अगर आज ये जमात खत्म हो गई ना, तो फिर दुनिया के अंदर आपकी इबादत नहीं की जाएगी। अजीब नबी अलैहिस्सलाम ने बात कर दी, अल्लाह ताला से बात कर रहे, ठीक है, कि अल्लाह अगर आज ये जमात खत्म हो गई ना, तो फिर आपकी इबादत इस दुनिया में नहीं की जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर उलमा ने बड़ी बात करी कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी बात कैसे कह दी कि अगर आज ये जमात खत्म हो गई, यानी काफिर 3 टाइम्स है ना, वो हमें बच के तो नहीं जाने देंगे, सबको चुन चुन के मार देंगे, ठीक है, तो अगर हम खत्म हो गए ना, तो फिर सिर्फ ये नहीं कि हमारी जानें खत्म हो गई, हम जो है वो शहीद हो गए, जन्नत में चले गए, बल्कि अल्लाह दुनिया में फिर आपकी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। क्या मतलब? कि सिर्फ आपकी तौहीद वाली इबादत करने वाला कोई नहीं, वरना तो अल्लाह ताला की इबादत करते ही हैं लोग, लेकिन शरीक भी करते हैं बुतों को, और है ना। तो ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत तो बंदे कर सकते हैं, बहुत सारे मुसलमान थे मदीना मुनव्वरा के अंदर, मौजूद थे, राइट। अगर यहाँ से ये लोग खत्म हो जाते तो मदीना मुनव्वरा के अंदर भी तो मुसलमान मौजूद थे, कुछ तो थे मक्का मुकरमा के अंदर भी मौजूद जिन्होंने अपने इस्लाम को छुपाया हुआ था, वो तो अल्लाह की इबादत कर सकते थे। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी बात क्यों कही? अबू जहल खुद क्यों आगे नहीं आया? अबू जहल था, जंग के अंदर शामिल था, लेकिन वो भी बेसिकली एक सेफ जगह के ऊपर ही था, उसके चारों तरफ जो था ना वो उसके बॉडी गार्ड मौजूद होते थे। जी वो जो बच्चे कौन थे जिन्होंने अबू जहल को मारा था, उन बच्चों का जिक्र इंशाल्लाह अगली दफा में आएगा। आपने क्या कहा मुझे समझ नहीं आया। फिर वो मदीना मुनव्वरा पे चढ़ाई करते, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर अभी ये लोग खत्म हो गए फिर आपकी इबादत नहीं होगी, ठीक है, तो किसी ना किसी तरह या तो वो लोग भी खत्म हो जाएंगे या आज नहीं तो कल उन्होंने भी दुनिया से चले जाए। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बात क्यों कही? उसके ऊपर उलमा ने उसका जवाब ये दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही ना तो उन्होंने सिर्फ अपने सहाबा के लिए ये नहीं कहा कि अगर ये सहाबा आज मारे गए तो फिर दुनिया में आपकी इबादत नहीं होगी, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर अपने आप को भी शामिल किया। ठीक है, यानी ये पूरी जमात जिसके अंदर मैं भी शामिल हूं, अगर ये जमात खत्म हो गई तो दुनिया में आपकी इबादत करने वाले इंसान नहीं रहेंगे। क्यों? इसलिए कि बाद में इस्लाम छोड़ देंगे। नबी अलैहिस्सलाम को ये बात पक्की पता थी और उनको यकीन था इस बात के ऊपर कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं। आप ससरम के बाद कोई नबी दुनिया के अंदर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि इन नबी को अगर शहीद कर दिया तो अल्लाह ताला फिर से किसी नबी को भेज देंगे, जैसे जकरिया अलैहिस्सलाम को काफिरों ने शहीद कर दिया था तो उनके बाद यहया अलैहिस्सलाम आ गए, यहया अलैहिस्सलाम को काफिरों ने शहीद कर दिया उनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए नबी बन करके, राइट। वो काम करते रहे, नबूवत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे। अगर आप इस दुनिया से चले जाते ना तो उसके बाद फिर कोई आने वाला नहीं था लोगों को बताने के लिए कि अल्लाह ताला की इबादत ही करनी है, किसी और की इबादत नहीं करनी। जो सहाबा मौजूद थे ना, उन सहाबा के पास अभी इतना दीन आया ही नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर वो आगे दीन की हिफाजत कर सकते। क्यों? इसलिए कि अभी तक दीन जो है ना वो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर मुकम्मल नहीं फरमाया था। मुकम्मल कब फरमाया था? हज्जतुल विदा के मौके पर, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम हुज्जत, राइट, हुज्जत, ठीक है, व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, ठीक है। तो उस वक्त जाकर के दीन मुकम्मल हुआ, अभी तो दीन मुकम्मल ही नहीं हुआ था, अभी तो दूसरी हिजरी चल रही थी, ठीक है ना। तो सहाबा के पास इतना दीन मौजूद था ही नहीं कि जिसकी बुनियाद पर वो खुद सेल्फ सफिशिएंट होकर के इस दीन को आगे फैला सके। इनके ऊपर बाद में जब दीन मुकम्मल हो गया फिर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वापस बुला लिया, अब जो है ना सहाबा वर सेल्फ सफिशिएंट, अब वो दीन की जो है वो आगे तब्लीग व इशारत करने के काबिल हो चुके थे, ठीक है। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर इस वक्त जो है ना वो अल्लाह ताला की अजमत गालिब थी कि अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला इस जमात को ख़त्म भी कर सकते हैं, कुछ पता नहीं अल्लाह ताला, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने वादा किया है, लेकिन इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को उस वादे की बजाय जो है ना अल्लाह ताला की अजमत जो है वो ज्यादा याद आ रही थी, ठीक है। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज, इतने बड़े अल्लाह ताला हैं और अल्लाह ताला की मखलूक इतनी ज्यादी है कि हमें हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं अल्लाह ताला के सामने, ठीक है। तो ये चूंकि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कैफियत गालिब आई हुई थी, इस वजह से ऐसे रो रो करके नबी अलैहिस्सलाम दुआएं मांग रहे थे। और वो अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है नबी अलैहिस्सलाम को पीछे से देख रहे थे, बहुत दुआएं मांगी, बहुत दुआएं मांगी, तो अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे से आए और नबी अलैहिस्सलाम को पीछे से अबू बकर सिद्दीक उन्होंने गले लगाया, ठीक है, और फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कर दीजिए, बस कर दीजिए, इनफ इनफ, ठीक है ना, हसबुक हसबुक, बहुत हो गया, बहुत हो गया, आपने तो रोने धोने की इंतहा कर दी, अब बस कर दीजिए, अल्लाह ताला ने आपकी बात को मान लिया है, ठीक है। तब नबी अलैहिस्सलाम ने फिर रोना धोना खत्म किया, सो ठीक है। इंशाल्लाह बाकी तफसील जंगे बदर की अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।